ओम शांति। कैसी चल रही भट्टी भाई? एक इसी सुंदर टॉपिक पर सभी चिंतन करेंगे। सदा का चिंतन है ये, जैसे आज भी बाबा ने कहा, ज्ञान का चिंतन बुद्धि की खुराक है। ये खुराक तुम्हें स्वयं खिलानी है और फिर दूसरों को भी खिलानी है, अपने को भी। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक, कौन बन सकते हैं अच्छे योगी? आप कहीं बाहर भी जाओ, सेंटर में क्लास भी करा सकते हैं इस पे, और ये आवश्यक टॉपिक भी है सभी के लिए। कौन बन सकते हैं अच्छे योगी? हाँ, इसमें हम इस टॉपिक पर फोकस करें तो जिसकी अच्छी एकाग्रता होगी वो अच्छे योगी बनेंगे, और एकाग्रता के लिए एकांत पहले। एकांत से क्या होता है? देखिए, एक एकांत है कोई अपने कमरे में अकेला रहता हो, लेकिन एकांत वो सर्वश्रेष्ठ होता है जहां हम प्रकृति के बहुत समीप होते हैं। कईयों को अनुभव होगा, पानी के पास जाने से विचार सुंदर होने लगते हैं, हरियाली, हरे हरे पेड़ों के पास जाने से नए नए विचार उठने लगते हैं, खुले आकाश में चिंतन अच्छा होता है। तो प्रकृति की जितनी समीपता होती है उतना ही चिंतन गहरा होता है, और गहरे चिंतन का अर्थ है ये मनन आत्मा को मगन कर देता है। मनन वही सर्वश्रेष्ठ है जो आत्मा को मगन कर दे, इसलिए एकांत बहुत आवश्यक है। इससे एकाग्रता बढ़ जाती है और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे पास जमा होने लगता है, क्योंकि ये खजाना भी बहुत सुंदर खजाना है जो हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करता है, और समय आने पर यही श्रेष्ठ संकल्प हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने में मदद करते हैं। और आगे चलें, कैसी नेचर हो योगी की? सॉफ्ट, सरल, ये बाबा के महावाक्य हैं। पहले तो कई मुरलियां चली हैं इस पर, सरल चित्त आत्मा ही सहज योगी बन सकती है। बाबा तो शब्द भी बहुत सुंदर बोलता है, जिनका सहज स्वभाव है वो सहज योगी, और जो सहज योगी हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सहज योग हो जाए, नेचुरल योग हो जाए, जो कर्म में भी आ जाए और जीवन में आ जाए, जिसे बाबा कहा करते थे केवल योग लगाने वाले योगी नहीं, योग युक्त जीवन वाले योगी, जिसमें हमारा जीवन योग युक्त आ जाए, हो जाए। एक योग युक्त आत्मा के जो लक्षण हैं वो जीवन में समा जाएं। तो सहज भाव बनाने पर हमें बहुत ध्यान देना है। सहज भाव, काम में हम सारा दिन रहते हैं, संगठन में रहते हैं, समस्याएं भी आती हैं, सहज भाव से सब में रहना, इससे हमारी संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं होगी, हम एकाग्र रह सकेंगे। क्योंकि अगर हम सहज भाव में नहीं रहते तो रोज की दिनचर्या में छोटी-छोटी बातें हमारे मन को विचलित करती रहेंगी। कर्म करें सहज भाव से। तो एक बहुत अच्छा महावाक्य मैं आपको याद दिला दूं, इस पर आप वर्क करें जीवन में। बहुत गहरा महावाक्य है, अव्यक्त बाबा का है, रिवाइज कोर्स में आ चुका है कुछ समय पहले। जो बच्चे साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं वो एक मास का काम एक घंटे में कर सकते हैं। बहुत बड़ा राज बता दिया बाबा ने, एक मास का काम एक घंटे में। हजार गुनी कार्य क्षमता बढ़ गई। तो हमारी सारी शक्तियां संकल्पों की एकाग्रता में समाहित हैं, संपूर्ण शक्तियां। जिसका चित्त जितना शांत है वो उतना ही शक्तिशाली, कार्य क्षेत्र में वो आत्मा उतनी ही सफल। विजय, कर्म सहज बिना कठिनाइयों के। तो सहज स्वभाव पर बहुत ध्यान देना है, इसमें टेंशन नहीं होती आत्मा को। सहज भाव से हम सब कुछ करते रहते हैं, और जब हमारा स्वभाव सरल हो जाता है तो एक और अच्छा अनुभव रहता है कि सारा दिन बहुत सारा कार्य करने के बाद आत्मा को ऐसा महसूस होगा जैसे हमने कुछ नहीं किया। सरलता से ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी। आगे चलें, सहज योग। अच्छे योग के लिए बाबा एक बहुत अच्छी चीज बताया करते हैं मुरलियों में। कभी ये लहर चली है बहुत ज्यादा, बिना त्याग के तपस्या नहीं होती, और बिना तपस्या के श्रेष्ठ सेवा नहीं होती। एक मुरली तो पूरी इस पर है व्यक्त बाबा की, जिसमें त्याग को भी बाबा ने सूक्ष्म रूप दिया। मोटे त्याग से तो हम सब परिचित हैं, त्याग का भी सूक्ष्म स्वरूप, वो त्याग जो आत्मा के लिए तेज बन जाता है, वो त्याग जो स्वयं में ही आत्मा के लिए बल बन जाता है, ऐसा त्याग हमें तपस्वी बना देता है। तो बाबा ने उसमें दो बातें कही, देह भान का त्याग, ये तो सब जानते ही हैं हम, मोटी बात भी है और सूक्ष्म भी है, लेकिन विशेष बात जो रोज के जीवन से जुड़ी हुई है, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। ये त्याग ही सूक्ष्म त्याग हो जाता है। तो हम सब जो समर्पित हैं, सभी ने बड़े बड़े त्याग किए ही हैं। त्याग कोई बहुत धन संपत्ति छोड़ देना उसको नहीं कहते, कोई बहुत बड़े घर को छोड़ाए उसको भी नहीं कहते। त्याग, सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया ना सबने, संसार से जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति बना दी। तो इस त्याग का परिवर्तन तपस्या में हो जाए। किसी का त्याग यदि तपस्या में परिवर्तित नहीं होता तो उसके त्याग का तेज भी उस आत्मा को प्राप्त नहीं होता, फिर जीवन साधारण बन जाता है। इस पर हम ध्यान देंगे। कर्मेंद्रियों के जो रस हैं, जैसे बाबा का पीछे एक संदेश आया, ज्ञान सरोवर में आया था, मुझे तो किसी ने सुनाया कि बाबा ने दिखाया ऊपर कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बिजी हो गए हैं। आजकल जमाना है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बहुत बुद्धि उसमें लगानी पड़ती है। तो बुद्धि की शक्ति तो वही है, अगर वो बढ़ जाती है तो योग में संपूर्ण सफलता नहीं होती है। तो हम उन चीजों से भी बचें, त्याग में रहें जिनकी हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है। इस पे भी सबको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये सब चीजें एक झटके में ही समाप्त हो जाएंगी। आप सबने सुना होगा, वैज्ञानिकों ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि सूरज से प्लाज्मा,
प्लाज्मा कुछ होता होगा, वो ज्यादा आ रहा है, और अगर वो बहुत आ जाता है तो इस धरती से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स
दोनों फेल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सोचो देखो, सारा संसार इससे ही चल रहा है, करोड़ों लोगों को तो काम मिला हुआ है ना इसमें, करोड़ों क्या अरबों को मिला हुआ है संसार में इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनके एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरी करते हैं, और बिजली से तो सारा संसार जगमगा रहा है, घर घर में बिजली है, बिजली ना हो तो सारे काम धंधे भोजन बनाने तक समाप्त हो जाएगा। तो ये होना तो है ही, तो हम अपने को इनसे उपराम रखें, इसका अर्थ है ना हम इन्हें यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनमें हम अटक न जाएं, इनको हम अपने जीवन का आधार न बना बैठें, और आगे चलें योगयुक्त जीवन के लिए। ये हमारे पिलर्स हो सकते हैं योगयुक्त जीवन के, जैसे हमने अपनी प्रदर्शनियों में बाहर वालों के लिए चार पिलर बनाए हैं, वो प्रारंभिक पिलर हैं। जब हम योग के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो ये पिलर हमारे हो जाते हैं योगयुक्त स्थिति को बनाने के लिए। एक और बहुत अच्छी चीज, हम अभ्यास पर आ जाएं, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस, जिसको बाबा इस बार कह गए हैं। बाबा रिजल्ट लेंगे दो बातों का, दूसरों को ओरिजिनल स्वरूप में देखना, याद होगा सभी को, और दूसरा पूर्वज बनकर सकास देना। तो दोनों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से जो प्रैक्टिकल फायदा होता है, बात केवल इसमें प्योरिटी की नहीं, आत्मिक दृष्टि से एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। सभी इसको अपने अभ्यास का मुख्य केंद्र बना लें। और एक बहुत अच्छी गुह्य बात साकार मुरलियों में आ चुकी है, दूसरों को आत्मा देखना, माना वाइब्रेशंस देना। हम यदि आत्मा देखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम सबको सकास दे रहे हैं। जैसे पूर्वज की लास्ट मुरली जो चली, उसमें बाबा ने ये बहुत गुह्य बात कह दी कि अगर तुम चलते फिरते पूर्वज के नशे में रहो तो तुमसे सभी धर्मों की आत्माओं को सकास मिलती रहेगी। सकास देना अलग बात, लेकिन इस स्वमान में रहने से ही सकास मिलती रहेगी, ये बहुत सुंदर और गुह्य बात हो गई। तो ऐसे ही आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस बढ़ाने से चित्त की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। अभ्यास में जैसे आत्मिक दृष्टि का है, वैसे ही अशरीरीपन का, और अशरीरीपन पर भी एक चीज पर विशेष ध्यान देंगे, बहुत सुंदर चीज है। पिछले साल बाबा के एक संदेश में ये बात आई थी, बिल्कुल एक साल पहले जुलाई में पिछले साल, वो ये थी, स्वराज्याधिकारी की स्थिति द्वारा और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति द्वारा ही तुम विश्व का कल्याण कर सकते हो। तो एक बहुत ऊंची दृष्टि बाबा हम सबको दे रहे हैं। ऐसा दीदीपन का अभ्यास हम इस रूप में करें कि मैं आत्मा भ्रकुटि सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी हूं, मालिक। अपने को ये बहुत गहरी फीलिंग दें, मैं मालिक हूं, करावनहार हूं। इससे चित्त बहुत शांत रहता है और हम देह से न्यारेपन में रहकर जैसे कि प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, अपना स्वरूप भी इसमें दिखाई देगा। जो बाबा ने पिछली बार कहा था, तुम स्वराज अधिकारी हो, राजा हो, तो राजा कभी कभी का नहीं होता, राजा 24 घंटे सालों सालों का होता है। ये नहीं जब प्रैक्टिस कर रहे तो याद है मैं राजा हूं और बाकी राजा नहीं हूं, तो राजाई की जो स्थिति है स्वराज अधिकारी की, वो अभ्यास करते करते हमें ऐसी लानी है कि हम मालिक बन जाएं, उसमें भी मन के मालिक, जिसमें बाबा ने दो बार कहा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम मन के मालिक हो। ये फीलिंग बहुत अच्छी हम देंगे, इसी में स्वमान भी आ जाता है। और एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो योग को सरल बनाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है, वो है बार बार की प्रैक्टिस। सब जानते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कठिन चीज को भी सरल कर देती है। योग के भिन्न भिन्न जो अभ्यास हमें मालूम है, ऐसा दीदीपन के अभ्यास, स्वमान के अभ्यास, उनको जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस में लाते हैं, हमारा योग सहज हो जाता है और एकाग्रता का सुख हमें मिलता है। सब भट्टी में भी अनुभव कर रहे होंगे, बुद्धि मन लंबा समय जब एकाग्र हो जाती है याद में, तो वो सुख बड़ा अनुपम है, वही अतीन्द्रिय सुख है। यही वो सुख है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को भी बढ़ा देता है। ये केवल सुख नहीं रह जाता, लेकिन हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ाने वाला बन जाता है। एक बात और आप सबको ध्यान में दिलाऊं, और सभी करते ही होंगे और करना भी है, कि अपने पास मुरलियों से, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, हम ऐसी पॉइंट्स अलग से लिख के रखा करें जो हमारे लिए खजाना हो। कोई बात जीवन में आए जो हमारे संकल्पों को बहा ले जाती हैं, बाह्य मुखी कर देती हैं, ऐसे समय में ज्ञान की वो बातें बल बनकर हमें स्थिर रखें, साक्षी भाव में स्थित कर दें, सहज भाव में ले आएं। इसलिए सभी को मूल्यों से जो पॉइंट अपने को प्रिय लगती हों, सबकी प्रिय पॉइंट्स अलग अलग होती हैं, ऐसी प्रिय पॉइंट्स को अलग लिख लेना चाहिए और उन पे दृष्टि डालते रहना चाहिए ताकि वो याद रहे। तो जो चीजें याद रहती हैं उस पे मनुष्य का मनन चलता है, जो चीजें याद रहती हैं अच्छी होंगी बल देंगी, निगेटिव होंगी बल ले लेंगी। तो इस तरह सभी योग के अपने बल को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है। सभी भट्टी कर रहे हैं, अब तो साल में एक दो बार हो ही जाती है ना, कई बार हो जाती है भट्टियां, इससे हमारी जो कॉन्स्टेंसी है, निरंतरता है, वो बनी रहती है। और सभी तैयार होते रहें आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में सबको बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है, इसके लिए भी तैयार करें। कल भी बाबा ने कहा एवर रेडी और संपन्न संपूर्ण, ताकि साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएं। जैसे अब लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, शक्तिशाली हैं, अब ये बाबा की ओर चली जाए दृष्टि कि इन्हें भगवान पढ़ा रहा है, ये बात संसार में कितनी वंडरफुल होगी जब संसार में आवाज फैलेगी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान ने पढ़ाया, मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाया, गुरुओं ने मनुष्यों को पढ़ाया और इन्हें भगवान ने पढ़ाया, तो लोग चमत्कृत होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। ये अब स्थिति के द्वारा होना है। तो सभी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, भट्टी 3 दिन पूरी हो जाए इसको कंटिन्यू करें, इसके कुछ पहलू रोज अभ्यास में लाएं, ताकि इसका इफेक्ट जल्दी समाप्त न हो जाए, अविनाशी बन जाए हमारे जीवन में। ओम शांति। चलो गीत बजा दो भाई, और सभी एक स्थिति में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, पूर्वज, पूर्वज माना बड़े, सृष्टि के बड़े हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिवान। और सर्वशक्तिवान बाबा ऊपर से नीचे उतरकर हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं कंबाइंड स्वरूप।